समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
सुप्रभात AIR FM गोल्ड पर कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी सुनने वालों को नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, रोजाना की तरह आज भी आपको लेकर चलेंगे देश दुनिया की सैर पर और आपको देंगे वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार सरफिरोजी एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वी आर बिगिनिंग विद अ वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम बेसिकली आज सवेरे। सो in this particular program we first start with the national international news, then metro city updates follow, and then some historical information which is related to today. Today it's 6th of May 2026. Me and Sir Firozi, we are pumped up and thrilled to begin our program, so without any further delay of even a split second, let's start with the headlines.
Bilkul Shagun. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। एक रिपोर्ट।
वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
The Election Commission of India has directed West Bengal Chief Secretary, Director General of Police and Central Armed Police Forces to enforce zero tolerance towards any incidents of post-poll violence. In a directive issued after reviewing the situation on the ground, the Commission stressed the need for strict and immediate action to maintain law and order following the Assembly election results. The Election Commission of India asked the state administration and security agencies to take all necessary steps to prevent intimidation, reprisals or clashes linked to the electoral outcome. The poll body also instructed officials to ensure the safety and security of all citizens, particularly vulnerable groups and political workers, and to maintain a visible presence of security forces in sensitive areas. Senior officers have been asked to remain on alert and respond swiftly to any incidents reported from across the state.
और शगुन, अपने श्रोताओं को बताते चले कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में नए विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पास भेजे जाने के साथ ही औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इसके साथ ही नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि परिणाम घोषित होने के बाद अधिसूचना जारी करना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम है। इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किए जा सकेंगे। मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई।
मूविंग ऑन टू अनदर हेडलाइन, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA हैज फाइल्ड अ चार्ज शीट अगेंस्ट 3 men accused of plotting a bioterror attack linked to the banned terror organization ISIS. The conspiracy aimed at mass poisoning of people in public spaces using ricin, a deadly biological toxin derived from castor seeds and listed under Schedule 1 of the Chemical Weapons Convention. So this was listed under Schedule 1. The main accused, Sayed Ahmed Muhyiddin from Hyderabad, along with co-accused Azad and Mohammad Suhail from Uttar Pradesh, have been charge-sheeted before the NIA Special Court in Ahmedabad under provisions of the Unlawful Activities Prevention Act, relevant under provisions of this provisions of Bhartiya Nyay Sanhita and the Arms Act as well. Investigators revealed that the accused were working under the guidance of foreign-based ISIS handlers and had coordinated efforts to recruit vulnerable youth, spread terror, and prepare for bioterror strikes. US President Donald Trump has announced that Project Freedom, A mission to guide stranded vessels through Strait of Hormuz will be paused for a short period of time. In a social media post, Mr. Trump said that great progress had been made toward reaching a comprehensive agreement with Iranian representatives to end the ongoing conflict. He explained that in light of recent military developments and the advancement of diplomatic talks, there has been a mutual decision to pause the escort operations under Project Freedom for a short period. Mr. Trump added that the pause will allow time to see if a final agreement between the US and Iran can be reached. The US President's announcement came as Secretary of State Marco Rubio said the initial US-Israeli offensive in Iran, Operation Epic Fury, is over after achieving its objectives.
और श्रोताओं अब रुख कर रहे हैं आखिरी हेडलाइन की ओर और बात करेंगे क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। श्रोताओं अभी हमने आपको दी देश और दुनिया की खबरें, अब रुख कर रहे हैं महानगरों की ओर। कहां से शुरुआत कर रहे हैं शगुन?
स्टार्टिंग विद चेन्नई, इनफैक्ट आई हैव टू अपडेट्स स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन।
जी,
सदर्न रेलवे चेन्नई डिवीजन हैज कमीशन 20 न्यू पार्किंग फैसिलिटीज इन दिस ईयर, ब्रिंगिंग द टोटल अमाउंट ऑफ ऑथराइज पार्किंग लोकेशंस फ्रॉम 106 टू 126। अ की हाईलाइट is the multi-level parking facility at Chengalpattu railway station built over 820.32 square meter to handle heavy passenger footfall. The facilities have been set up at several stations, which include Tambaram East, Chengalpet, Gindi and St. Thomas Mount, among others. So Chengalpet and Perambur are also part of development works under the Amrit Bharat station scheme. The parking areas are equipped with digital ticketing systems, UPI-based payment options and CCTV surveillance to improve safety and convenience. On to our next update from Chennai. City researchers have identified a locally found freshwater microalgae that can eat plastic waste in polluted water bodies in 3 months. A study by the Centre for Advanced Studies in Botany at the University of Madras found that the Euronema Thentrothens, isolated from plastic waste in Rajakilpakkam Lake, can degrade up to 27% of high-density polythene and 21% of low-density polyethylene used in common household items, which includes bottles. And over a 12-week period, under lab conditions, researchers said the algae matches to plastic surfaces and form biofilms, which triggers chemical and structural changes, and hence it can affect this. The microalgae can help in reducing the plastic waste.
और शगुन चेन्नई के बाद अब चलते हैं राजधानी दिल्ली की ओर। दिल्ली सरकार ने व्यवसायिक और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1130 व्यवसायिक शिक्षकों को अब प्रति माह 38,100 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 784 केंद्रों पर कार्यरत शिक्षकों का वेतन 21,000 रुपये से बढ़ाकर 30,420 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि इस वृद्धि से शिक्षकों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और उनका मनोबल बढ़ेगा। दिल्ली सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी यानी वजन और माप सेक्टर में लाइसेंस व्यवस्था को सरल करते हुए अब इसे लाइफ टाइम वैधता दे दी है, जिससे बार बार नवीनीकरण की जरूरत खत्म हो जाएगी। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये सुधार राजधानी की विनियमन अभ्यास 2.0 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों में नियमों को सरल बनाना और अनुपालन का बोझ कम करना है। श्री सिरसा ने कहा कि लाइसेंस देने से पहले भौतिक स्थल निरीक्षण की जरूरत खत्म कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब लाइसेंस स्वघोषणा के आधार पर जारी किए जाएंगे। श्री सिरसा ने कहा कि एक बार निर्धारित फीस देकर लिया गया लाइसेंस तब तक वैध रहेगा जब तक उसे नियंत्रक या अधिकृत अधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित नहीं किया जाता।
Now focusing on Bengaluru, where Karnataka government has signed an SOI with ISEG Foundation to prepare a comprehensive economic master plan for the Bengaluru metropolitan region, and this was done in the presence of Deputy Chief Minister. Spanning 8,000 square kilometer with a population of 16 million, The Bengaluru metropolitan region contributes 43% of Karnataka's GSDP and is a key hub for IT, aerospace, as well as biotech, though it faces challenges like congestion and rising costs. The plan to be completed by September will outline a data-driven vision for 2032 and 2037 with targeted interventions across technology, infrastructure, housing and sustainability. And this aligns with Niti Aayog's G-Hub initiative and aims to more than double Bengaluru's economy and improve livability. A steering committee led by the Chief Secretary will oversee implementation with ISEG Foundation as the knowledge partner.
और अब रुख कर रहे हैं मुंबई की ओर. मुंबई विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा की है. प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से होंगे, जिसमें प्री एडमिशन पंजीकरण 21 मई को समाप्त होगा. छात्र 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रमों, 4 वर्षीय ऑनर्स या अनुसंधान कार्यक्रम और 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं. बीए, बीकॉम और बीएससी के अलावा आईटी, डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और मीडिया जैसी उभरते क्षेत्रों में भी प्रवेश लिया जा सकता है. पहली मेरिट सूची 26 मई को जारी की जाएगी. इसके बाद 30 मई और 4 जून को अगली सूचियां प्रकाशित की जाएंगी. प्रत्येक सूची के बाद दस्तावेज सत्यापन और शुल्क भुगतान किया जाएगा. कक्षाएं 13 जून से शुरू होने की योजना है.
Heading to Hyderabad now, the Hyderabad administration has announced comprehensive safety measures for the outer ring road following a high-level coordination meeting held yesterday. Police Commissioner V.C. Sajjanar chaired the meeting with senior officials from the Transport Department and NHIA and other agencies. The ORR witnesses 2.8 lakh vehicles daily, with an average of 5 to 6 accidents occurring each day. The commission emphasized proactive prevention rather than reactive responses, the reactive response, setting a target of 0 accidents. Key measures include increased CCTV surveillance, enhanced vehicle fitness inspections, and special counseling for traffic violators.
और शगुन, वैसे तो अब समय है कोलकाता के जो महानगर है हमारा उसके बारे में जानकारी देने का, तो वहाँ काफ़ी सारी सरगर्मियाँ चल रही हैं, राजनीतिक सरगर्मियाँ. उसके अलावा हमारे पास आज कोलकाता के लिए मौसम का अपडेट है. कोलकाता में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. हल्की बारिश या गरज के साथ तूफान आ सकता है. न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. और श्रोताओं, इसके साथ ही बात कर लेते हैं दूसरे महानगरों के मौसम की. शुरुआत करते हैं दिल्ली से. राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. बिजली कड़क सकती है. न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं मुंबई में आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. शगुन, आपके पास महानगरों के मौसम की क्या जानकारी है?
Well, yes, I'll begin again with Chennai. It is expected to have a partly cloudy sky and there is a possibility of moderate rain or even thunderstorm. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have thunderstorm with rain. Minimum temperature was 24 degrees Celsius in Bengaluru and the maximum will be around 34 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. Minimum temperature will be around 27 degrees and maximum temperature will be around 39 degrees Celsius in Hyderabad. Sir Firozi.
जी शगुन, ये था महानगरों के मौसम का हाल. और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र करने का. आज यानी 23 अप्रैल के दिन 1739 में चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में मराठों ने वसई अभियान पर विजय प्राप्त की और उत्तरी कोंकण को मराठा साम्राज्य में लाया गया.
And today there is a special day, the special observance which we'll tell our listeners about. Well, today International No Diet Day is being observed globally. And this global initiative promotes body positivity and challenges weight stigma. So body positivity is about treating your body with respect, no matter your size, your age or your ability. That's why you should make choices rooted in care. And this day reminds us that. This day reminds us to step back from quick fix diet culture and then refocus on health in a kinder, more realistic way. And It often symbolized, this day often symbolized by a light blue ribbon, which is meant for individuals to take a break from dieting, appreciate their bodies, and thereby educate themselves on the inefficacy of commercial restrictive diets. So International No Diet Day is being observed today globally. Now we'll take our listeners way back in time in the history. 1840, starting with this year, Great Britain's penny black, the first adhesive postage stamp, became valid for use. In 1937, the airship Hindenburg, the largest dirigible ever built and the pride of Nazi Germany, bursted into flames in New Jersey.
और अब वक्त में चलते हैं थोड़ा पीछे 1889 में आज ही के दिन आइफल टावर को जनता के लिए खोला गया।
In 1940, John Steinbeck was awarded the Pulitzer Prize for his novel The Grapes of Wrath. In 1954, Roger Bannister of Britain became the first athlete to run a mile less than 4 minutes. In 1955, West Germany formally joined the North Atlantic Treaty Organization, or NATO. In 1957, the last episode of I Love Lucy was aired and considered one of TV's landmark sitcoms. Now, in the year 1994, English Channel was officially opened, connecting Britain and European mainland for the first time since the Ice Age.
और 1997 में आज ही के दिन फ्रांस की क्रिस्टीन जेनिन ध्रुव पर पैदल पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी।
In 1998, Steve Jobs introduced Apple's first iMac, personal computer. In 2002, Elon Musk founded the aerospace company SpaceX. In 2004, the final episode of the television sitcom Friends was aired, and this was watched by more than 52 million viewers.
बिल्कुल शगुन, और आज का दिन इन सभी वजहों से तो खास है ही, इसके अलावा कुछ ऐसी शख्सियतें थी जो आज ही के दिन इस दुनिया में आई या हमसे जुदा हुई, तो उन्हें भी अब हम याद करेंगे.
And this is what we've all been waiting for.
बिल्कुल, तो सबसे पहले कहां से शुरू कर रहे हैं?
First we'll tell our listeners about Sigmund Freud, the founder of psychoanalysis, a theory of how the mind works and a method of helping people in mental distress. Today it's his birth anniversary, so he's psychology's most famous figure, most influential one as well. And Sigmund Freud, he was an Austrian neurologist born in 1856, and we often refer him as father of modern psychology. So Freud revolutionized how we think about and treat mental health conditions. Freud founded psychoanalysis as a way of listening to patients and better understanding of how their minds work. So psychoanalysis continues to have enormous influence on modern psychology and psychiatry as well. So his theories and work helped shape current views of dream, childhood, personality and therapy as well.
आज निशानेबाज गगन नारंग का जन्मदिन है. आज ही के दिन 1983 में चेन्नई में जन्मे भारत सरकार में उनकी उपलब्धियों के लिए गगन नारंग को पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया. 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गगन ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. 4 बार ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने वाले और साथ ही कई वर्ल्ड कप खिताबों को अपने नाम करने वाले इस खिलाड़ी ने भारत को बहुत से मौकों पर गौरवान्वित किया. भारत सरकार में उनकी उपलब्धियों के लिए गगन नारंग को पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है.
एंड सैफिरोजी, लेट मी अलाउ मी टू शेयर दैट एज अ 2 ईयर ओल्ड गगन नारंग एम्ड अ टॉय गन एट बलून्स इन अ शूटिंग स्टॉल इन Chennai's Marina Beach. So 27 years later, he was staring down the crosshairs at the historic Royal Artillery Barracks in London, shooting for a medal at the 2012 Olympics. He clinched bronze in the 10-meter air rifle event that day, and with it, India's first medal of that edition of the Games. A 4-time Olympian with multiple World Cup titles, the Chennai-born shooter has done much to make India proud on the global stage, be it his exploits with the rifle or through his famed Gun for Glory Academy, which nurtured several prodigies. And the Indian shooter has played a key role in raising the standard of the sport in his country, in our country, over the years.
और आज भारत के प्रसिद्ध तैराकों में से एक खजान सिंह का जन्मदिन है. 1985 के दक्षिण फेडरेशन सैफ खेलों में काठमांडू में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और नया राष्ट्रीय कीर्तिमान भी स्थापित किया था. सिंह को 1984 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया.
नाउ वी विल रिमेम्बर टेड वीम्स, The popular Midwestern band leader started his band in 1923 while attending the University of Pennsylvania, and in around 1925 he played in hotels and ballrooms. He started around with that in the city, and which also while also touring the Midwest. It was through radio that Weems, Ted Weems, made a name for himself, and he continued to be associated with popular radio programs throughout the 1930s and 1940s. And yes, orchestra started appearing regularly on a sponsored nationwide radio program with Ted Weems and Jack Benny.
आज लांस नायक आबिद खान की जयंती है, जो भारतीय सेना के उन जाबाज सैनिकों में से एक थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई में पाली नगर के मोहल्ला काजी सराय में 6 मई 1972 को जन्मे लांस नायक आबिद खान ने करगिल युद्ध में टाइगर हिल की चोटी पर 17 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत की नींद सुलाया। उनके बलिदान पर आज भी पूरा देश गर्व करता है। 30 जून 1999 को आबिद खान जत्था रवाना हुआ। दुश्मन की गोलीबारी के बीच कई सैनिक शहीद हो गए। एक गोली आबिद के पैर में भी आ लगी। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत न हारते हुए आगे बढ़कर एक साथ 32 फायर झोंक दिए। आबिद के इस ताबड़तोड़ हमले में 17 पाक सैनिकों की लाशें बिछ गई। इस बीच एक और गोली आबिद को आ लगी, जिससे ये वीर सपूत देश की रक्षा करता हुआ 1 जुलाई 1999 को शहीद हो गया।
Listeners, today we are also remembering Shanta Gandhi, dancer, playwright, theatre director and founding member of the Indian People's Theatre Association Ballet Troupe. So as a playwright, Shanta Gandhi is best known for reviving traditional forms of Indian drama. This includes folk theatre, Sanskrit drama for contemporary settings. Her first produced piece was The Middle One in 1966. In 1982, she served as chairperson of the National School of Drama, where she helped to develop youth arts for the country.
आज कश्मीरी कवि, अनुवादक और आलोचक अब्दुल रहमान राही की जयंती है। उन्हें उनकी कविता संग्रह नवाज़े सबा के लिए साल 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2004 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। और आज गोविंद मुनीस, भोजपुरी फिल्म निर्देशक गोविंद मुनीस की पुण्यतिथि है। हम सबने सुपरहिट फिल्म नदिया के पार जरूर देखी होगी, लेकिन उस सुपरहिट फिल्म को निर्देशित किया था गोविंद मुनीस ने, और वो फिल्म आज कल्ट फिल्म बन गई है। हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसी फिल्म का एक डायलॉग।
कहाँ है? वहीं चल के बैठो ना।
नहीं, पहले एक बात बताओ।
का?
तुम नाराज हो हमसे?
नहीं तो, नाराज काहे होंगे?
तो फिर बात का है? आज इतनी बदली बदली का नजर आ रही हो। कितनी देर हुई हमें आके? पास आके बोलना बतियाना तो छोड़ो, देखा भी नहीं हमारी तरफ। इसलिए हमको लगा कि कल की बात से
ऐसा कैसे सोचते हो?
तो
का सबके सामने तुम्हारे पास आके बैठ जाती, लाज नहीं आती हमको का?
पहले तो नहीं आती थी, कभी सबके सामने बात नहीं करती थी या कभी पास नहीं आती थी।
तब की बात और थी, अब ये सब नहीं होगा हमसे।
गोविंद मुनीस ने एक और अभिनेत्री को ब्रेक दिया था जिनका नाम आज हिंदी सिने जगत की सर्वश्रेष्ठ नायिकाओं में शुमार किया जाता है और वो हैं माधुरी दीक्षित, जिन्हें पहली बार गोविंद मुनीस ने फिल्म अबोध के लिए चुना था।
सो वी लिसन टू द डायलॉग फ्रॉम द मूवी, व्हाई डोंट वी गो अहेड एंड लिसन टू अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी एज वेल।
नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे।
So, listeners, today we are also remembering Henry David Thoreau, the essayist, poet, and philosopher. Well, he is best known for his book Walden. This is a reflection upon simple living in natural surroundings, and his essay also, Civil Disobedience. And among his lasting contributions are his writings on natural history, philosophy, and in which he anticipated the methods and findings of ecology and environmental history, two sources of modern-day environmentalism. So his literary style interweaves close observation of nature, personal experience, pointed rhetoric, symbolic meanings, and historic lore as well, while displaying a poetic sensibility as well as attention to practical detail. He was also deeply interested in the idea of survival in the face of hostile elements, historical change, natural decay. His books, articles, essays, journals, and poetry amount to more than 20 volumes. And he advocated abandoning waste and illusion to discover life's true essential needs. I was telling you about Henry David Thoreau.
और आज पंजाबी भाषा के एक विख्यात कवि शिव कुमार बटालवी की भी पुण्यतिथि है। शिव कुमार बटालवी को उनकी रोमांटिक कविताओं के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिनमें भावनाओं का उभार, करुणा, जुदाई और प्रेमी के दर्द का बखूबी चित्रण है। शिव कुमार बटालवी ऐसे शायर और कवि थे जो बहुत ही कम उम्र में इतना नाम कमा गए कि आज भी उनके लिखे गीत और कविताएं लोगों की जुबां पर हैं। उनके गीतों में बिरह की पीड़ा इस कदर थी कि उस दौर की प्रसिद्ध कवियत्री अमृता प्रीतम ने उन्हें बिरह का सुल्तान नाम दिया था।
कि पुछते ओ हाल फकीरां दा, कि पुछते ओ हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा, साडा हंज दी जून आया दा, साडा दिल जलियां दिलगीरां दा।
Wow, such beautiful words. Well, Shiv Kumar Batalvi, the poet, writer and playwright of the Punjabi language. We know him for his, as Sir Firozi was telling, his romantic poetry. And also, he's noted for heightened passion and separation and lover's agony. He wrote of love like it was meant to break you and somehow heal you too, all at the same time. Shiv Kumar Batalvi's words traveled farther than his life ever could, echoing through generations of music, memory and longing. Well, from Ikkuri to timeless ghazals, his poetry still lives in every heart that has loved deeply.
एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत, गुम है साथ मुरादी सोनी फब्बत, गुम है गुम।
Well, you may have known his verses, now you finally know the poet behind them.
Hasdi hai
श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सरफिरोजी और शगुन चोपड़ा को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
With that, we thank you so much, listeners, for tuning in, and we hope you have a great day ahead.
Namaskar.